नमस्कार, ब्रह्मा कुमारी की फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और सोशल मीडिया स्ट्रीम्स पर यह हमारी विशेष पेशकश है। इसका नाम है बी द चेंज सीरीज। पिछले कई दिनों से हम सभी दोस्त आप सभी के साथ मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। इस बदलाव के दौर में हम में से कुछ लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, कुछ लोग थोड़ी बहुत तकलीफों के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। अगर कुछ लोगों को ज्यादा ही दिक्कतें हो रही हैं तो वो मदद के लिए एक दूसरे का सहारा भी ढूंढ रहे हैं। परिस्थितियां कैसी भी हों, मगर अगर हम सब एक दूसरे का साथ देते रहें, एक दूसरे के लिए सकारात्मक बने रहें, पॉजिटिव बने रहें, तो हर मुश्किल को हम आसानी से पार कर सकते हैं। और इसी कोशिश में ब्रह्मा कुमारी का यह विशेष योगदान रहा है कि ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय से पिछले लगभग 2 महीने से हम आपसे ये बातचीत कर रहे हैं, जहां पर ब्रह्मा कुमारी के वरिष्ठ राजयोगी भाई बहने अपने जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों को, अपने जीवन के आध्यात्मिक यात्रा में उन्होंने जो चीजें पाई हैं, उन चीजों को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, हमारे समस्याओं के लिए मार्गदर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। आइए इस सफल प्रयास को आगे बढ़ाते हैं और आज भी हमारे साथ हम एक मास्टर ऑफ मेडिटेशन से मिलेंगे। अगर आप दोस्त चाहते हैं कि कोई सवाल पूछना चाहें, आपके मन में कोई उत्कंठा है, कोई उत्सुकता है, कोई ऐसा चीज है जिसके लिए आप समाधान चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो पे आप लिखकर भेज सकते हैं और उनमें से हम सवाल आज हमारे मास्टर ऑफ मेडिटेशन से पूछेंगे। अगर आप सिर्फ हमें एक शाउट आउट देना चाहते हैं, अपने ख्याल भी लिख के भेजना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। यूट्यूब या फेसबुक पर जहां पर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, वहां पर कमेंट्स पर आप अपने ख्याल लिखें। आज हमारे साथ मास्टर ऑफ मेडिटेशन, आज हमारे स्पिरिचुअल विजडम के सोर्स के रूप में ब्रह्मा कुमारी सुनंदा दीदी जी हैं, जो निदेशिका है ब्रह्मा कुमारी के मीरा सोसाइटी सब जोन के और साथ साथ निदेशिका है ब्रह्मा कुमारी जगदम्बा भवन रिट्रीट सेंटर पुणे के। दीदी जी फिल वक्त हमारे साथ पुणे से लाइव जुड़ रही हैं। दीदी जी, आपका स्वागत है।
थैंक यू
दीदी। पिछले कई दिनों से ये जो नया वक्त चला है, एक ऐसा वक्त चला है जिसे हम आजकल न्यू नॉर्मल भी कहने लगे हैं, बहुत सारे लोग ज्यादा जागरूकता के साथ जीने लगे हैं, ज्यादा लोगों को मास्क पहनना पड़ रहा है, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ रहा है, तो ये नया बदलाव आता है तो कुछ लोगों को इसे ढालने में दिक्कत सी महसूस होती है, मगर कुछ लोग धीरे धीरे इसकी आदत डालने लगते हैं। मगर आध्यात्मिकता एक बदलाव को आसानी से अपने जीवन में ढालने के लिए कैसे मदद करती है, कैसे हेल्प करती है?
शांति, सबसे पहले तो मैं आज विशेष थैंक्स अदा करूंगी हमारे अति मीठे, अति स्वीट, सदा ही सेवा में तत्पर श्री की निधि को अपने जीवन में धारण करने वाले श्री निधि भाई, साथ साथ रोहित भाई और ये सारा ही परिवार जो अभी इस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है या रोज कोई ना कोई नई बातें सुनते रहते हैं, आप सभी का भी मैं विशेष थैंक्स अदा करती हूँ कि आप रोज रोज ये अच्छी बातें जो कि जीवन को श्रेष्ठ बनाती है, जीवन को सहज बनाती है और जीवन में पॉजिटिविटी लाती है, ऐसी सहज बातें आज आप सभी रोज सुन रहे हो। वैसे भी कहा जाता कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। समय प्रति समय हम सभी देख रहे हैं कि हमारे उद्योग धंधे में, हमारे रहन सहन में, हमारे खान पान में, हमारे जीवन के संबंधों में हम परिवर्तन तो देखते ही रहते हैं और ऐसे भी कहो कि परिवर्तन लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन जो परिवर्तन पॉजिटिव होता है, श्रेष्ठ होता है, उसको व्यक्ति इजी स्वीकार करता है और जिस परिवर्तन में थोड़ी कठिनाइयां होती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए मन जल्दी तैयार नहीं होता है। लेकिन फिर भी जैसे समय आता है, जैसी परिस्थिति आती है, वैसे अगर हम उसे थोड़ा सा मॉडिफाइड करके थोड़ा सा उस समय पॉजिटिव वे से सोच करके हम अगर उसको स्वीकार करते हैं तो ये सारी बातें, चाहे मास्क पहनने की कहो, दूरी रखने की कहो, घर में बंद करके रखने की कहो, ये सारी बातें मन स्वीकार कर लेता है। हम आजकल कई बार ऐसा सुन लेते हैं और हमने खुद के जीवन में भी देखा, और कई हमारे कनेक्शन में आने वाले भाई बहनों के साथ भी मैंने बातें की, तो उन सभी ने इस ये जो अभी समय चल रहा है ये है तो कोई अच्छी बात नहीं कि बाहर घूमने वाला व्यक्ति मन चाहे जितना इधर जाओ उधर जाओ, ये सेवा करो, वो नौकरी करो, वो धंधा करो, रिश्तेदारों के पास जाओ, पढ़ाई के लिए फॉरेन चले जाओ, जो भी कुछ हम खुले दिल से कर रहे थे उसको अभी समझो थोड़ा ये हो गया कि बस वो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा मन के अंदर हमें अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी जो आया है उसे अगर हम सहजता से स्वीकार करते हैं तो ये बातें हमें कोई कठिन नहीं लगती है। इसके कई सारे फायदे भी, लॉकडाउन के कई सारे फायदे भी हम लोगों ने सुने, जैसे कि लोग घरों से बाहर ज्यादा रहते थे, अभी थोड़ा घर में रहते हैं तो घर के लोगों के साथ मिलजुल करके रहना, घर वालों के कुछ प्रॉब्लम है, घर वालों को, बाल बच्चों को, अन्य रिश्तेदारों को, जो संबंधों का सुख है वो हम नहीं दे पा रहे थे, बाहर बाहर ज्यादा रहते थे, आपस में थोड़ी लेन देन खुले दिल से नहीं कर पा रहे थे, वो अभी इस दौरान सभी कर रहे हैं। कईयों ने हमको कहा कि हमें बहन जी अच्छा पढ़ने की दिल थी लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे थे, हम वो कर रहे हैं। कईयों ने समझो कुछ अपने छंद जो होते हैं, अच्छे हैबिट्स जो होती है, वो करने के लिए उनको टाइम नहीं मिलता था, वो कर रहे हैं। मतलब किसी भी चीज को हम मन के द्वारा कैसे स्वीकार करते हैं उसके ऊपर उसकी सारी धारणाएं रहती है। इसलिए मैं सभी अपने सुनने वाले परिवार को ये कहूंगी कि आप इसे बहुत सहजता से स्वीकार करो, इसको कठिन नहीं समझो। जिस प्रकार एक ड्रामा चलता है तो ड्रामा के अंदर विविध सीन आते हैं, तो विविध सीन को ड्रामा में पार्ट प्ले करने वाले और ड्रामा को देखने वाले सभी स्वीकार करते हैं, तो हम भी अगर थोड़ा समय ये समझे कि मैं इस ड्रामा का एक्टर हूँ और मैं एक्टर होकर के इन सभी बातों को बड़े प्रेम से स्वीकार करूं, तो आपको ये सारा मनोरंजन लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा सोचने का तरीका जो है वो चेंज करना।
जी दीदी जी, हमारे कुछ दोस्त हमसे सवाल पूछना चाहते हैं, और हमारे साथ पहला प्रश्न है पमेला जी का, और वो यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हैं। वो कहते हैं कि बार बार मन में जेलेसी की फीलिंग आ जाए दूसरों के प्रति, तो क्या करें, काइंडली सजेस्ट मैम, कैसे हैं?
आपने अपना नाम प्रेमला बोला ना,
पमेला, तो पमेला,
प्रमिला बोला, ठीक है, तो प्रमिला के अंदर प्रेम है, तो देखो आपने जो आपके माँ बाप ने जो आपको नाम दिया है वही कितना सुंदर दिया हुआ है, जिसके अंदर ही प्रेम भरा हुआ है। तो आप अगर ये भी सोचे कि मेरा नाम ही प्रेम है तो मेरा काम भी प्रेम देना ही है। अच्छा चलो, फिर भी अगर हमारे अंदर जलसी तो मोस्टली वहां आती है जो काम मैं कर सकती हूँ वो अगर दूसरों को देते हैं और वो काम मेरे को नहीं दिया जाता है तो जलसी आती है। या हम दोनों शरीर के दूसरे को अधिक कुछ मिल रहा है, उस हिसाब से उसे कम मिल रहा है, तो उसको जो मिल रहा है वो देख करके भी ईर्ष्या आ जाती है। लेकिन ईर्ष्या को जीतने का सहज तरीका जो मैंने ब्रह्मा कुमारीज में सीखा वो मैं आपको बताती हूँ। ब्रह्मा कुमारीज ने ये सिखाया हमें कि आप रीस नहीं करो, रेस करो। दूसरी बात, हमेशा ये याद रखना है कि संसार के अंदर जितने भी लोग हैं, हर व्यक्ति की तकदीर अपनी अपनी है। मेरी तकदीर का जो है वो मुझे ही मिलेगा, मेरे तकदीर का और किसी को नहीं मिलेगा, न उसके तकदीर का मुझे मिलेगा। आप अपने मन को समझाओ कि हर एक व्यक्ति जो जितनी मेहनत करता है उस मेहनत का फल उसे ही प्राप्त होता है। इसलिए ईर्ष्या एक अग्नि के समान है। इस ईर्ष्या रूपी अग्नि में न जल करके आप जैसा नाम है प्रेमा, उसी प्रकार आप अपने आप को अच्छी तरह से ये समझाओ कि ईर्ष्या और संबंधों को बिगाड़ती है, उसके बजाय आप प्रेम करो उस आत्मा के ऊपर। जब आप उसको चेतना के रूप में देखेंगे तो आपको ये ईर्ष्या नहीं आएगी, आप ईर्ष्या की जलन से छूट जाएंगे। आप थोड़ा अपने को ये भी समझाओ, ये रामायण जो बना वो ईर्ष्या के कारण बना, तो हमें अपने घर के अंदर रामायण नहीं बनाना है, महाभारत नहीं बनाना है, लेकिन हमारे घर के अंदर हमें एक सतयुगी सुख निर्माण करना है। और आपको जो प्राप्त हुआ है उसके प्रति आप बहुत सोच, बहुत सोच कि जो आपको मिला है, तो आप अगर अपने प्रति जो मिला हुआ है वो सोचना शुरू करेंगे ना बहन, तो मैं आपको बताती हूँ कि जन्म से लेकर के आज तक आपको इतना कुछ मिला हुआ है, वो मिली हुई सारी लिस्ट अगर आप अपने सामने लाओ तो आपको लगेगा वाह रे मैं, वाह रे मेरा लक, वाह रे मेरी प्राप्ति। फिर ये जो भी निगेटिव बातें हैं इनसे आप इतना सहजता से छूट जाएंगे जो आपको वंडर लगेगा। तो ईर्ष्या को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, ईर्ष्या के बजाय आप प्रेम से उनके तरफ देखो और जो बातें आपको प्राप्त हुई है उन बातों के प्रति आप बहुत अच्छी तरह से अपने मन में लाओ।
जी दीदी, आपने ये जो बात कही ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि ईर्ष्या को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। एक और दोस्त हैं जो सवाल पूछते हैं, इनका नाम है, एक सेकंड, इनका नाम है अनन्या बोस, और अनन्या जी प्रश्न पूछते हैं कि ओम शांति दीदी, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट फॉर लॉन्ग टाइम इन स्टडी पूछते हैं।
अच्छा अनन्या भाई, आपका नाम है तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ऑलरेडी, जो अन्य में नहीं है वो आपके अंदर है, इसीलिए आपका नाम है अनन्य। अगर बहुत टाइम की एकाग्रता कंसंट्रेशन हम चाहते हैं तो जो भी सब्जेक्ट के प्रति आप कंसंट्रेशन चाहते हैं, चाहे पढ़ाई में हो, तो देखो कंसंट्रेशन वहां होता है जहां प्यार होता है, कंसंट्रेशन वहां होता है जहां लक्ष्य होता है, कंसंट्रेशन वहां होता है जिसके द्वारा मुझे क्या मिलने वाला है, प्राप्ति, वो प्राप्ति की लिस्ट या प्राप्ति की बातें मेरे पास अगर होती है तो वहां कंसंट्रेशन अपने आप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पढ़ाई में प्यार है, खाली पढ़ाई नहीं मुझे पढ़नी, कोई कह रहा है या जमाना पढ़ाई का है इसलिए मुझे पढ़ाई पढ़नी है, नहीं, लेकिन पढ़ाई से प्यार। जहां प्यार होता है वहां एकाग्रता होती है, जहां प्राप्ति होती है वहां एकाग्रता अपने आप हो जाती है। तो आप रुचि पैदा करो और जो आप प्राप्त करना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, उस पढ़ाई से होने वाली प्राप्ति को याद करो। प्राप्ति सारी अपनी बुद्धि के अंदर लाओ। जब प्राप्ति को आप बुद्धि में लाओगे और प्यार पैदा करोगे तो कंसंट्रेशन अपने आप हो जाएगा। जैसे कि हम लोग कई बार देखते हैं कि कुछ लोग हिमालय पर चले जाते, कितनी कठिन बातें होती है, ऐसी कितनी कठिन कठिन बातें लोग अपने जीवन के अंदर प्राप्त करते हैं। उसका आधार क्या होता है? लगन, रुचि। तो आप रुचि पैदा करो और रुचि के आधार से, प्राप्ति के आधार से आप देखेंगे कि आपकी कंसंट्रेशन पावर अपने आप बढ़ती जाएगी। कंसंट्रेशन माना हम जो कर रहे हैं वो उस समय उसके साथ हमारी एकाग्रता हो, हमें और कोई बातें याद ना आए। आजकल लोगों का ये ज्यादा एक प्रॉब्लम है कि वो एक करने के लिए बैठते हैं लेकिन उनको दूसरा याद आता रहता है, जिस कारण वहां उनकी एकाग्रता नहीं होती है। लेकिन एकाग्रता का आधार ही है रुचि। तो आप रुचि को पैदा करो तो एकाग्रता अपने आप हो जाए।
जी, बहुत ही अच्छी बात कही दीदी आपने कि अगर हम रुचि पैदा करते हैं तो एकाग्रता अपने आप आती है। ये प्रिया सिंह जी हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं यूट्यूब से, कहते हैं हम डिटैच रहकर अपने रिलेशन अच्छे रख सकते हैं, पर ऐसा मुमकिन होता है? व्हाई डू वी हैव एन अर्ज टू गेट समथिंग फॉर समवन? कभी कभार हमें लगता है कि हमें दूसरों के लिए ये चीज करना चाहिए, वरना उस चीज में करने में हमें कोई अपना इंटरेस्ट नहीं रहता, दूसरों को खुश करने के लिए हम चीजें करने लगते हैं। तो क्या ऐसा करना सही है, ऐसा प्रिया पूछते हैं।
बहन, प्रिया बहन, पहले आप डिटैच और अटैच इस बात को समझ लो। डिटैच और अटैच, अटैच बनकर के हमें किसी के लिए बहुत कुछ करना है। मान लो हमारे घर वाले हैं, घर वालों के प्रति हमारा हर एक के प्रति अलग अलग कर्तव्य है। बच्चों के प्रति अलग कर्तव्य है, पति के प्रति अलग कर्तव्य है, माँ बाप के प्रति अलग कर्तव्य है। फिर हम जाते हैं अपने कोई अगर जॉब करता है, कोई धंधा करता है, कोई नौकरी करता है, वहां पर भी हमारा कुछ अलग जिम्मेवारी होती है, कर्तव्य होता है। हमारे रिश्तेदारों के प्रति भी हमारा अलग अलग कर्तव्य होता है। तो ये सारा जो हम कर्तव्य है, ड्यूटीज, वो हम अटैच होकर के करें, मतलब हमको सबके प्रति, सबके साथ बड़े स्नेह से काम करें। जिसके लिए जो भी जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी हम बड़े प्रेम से निभाए, बहुत ही प्रेम से, शांति से, अपना समझ करके हम सबके लिए सब कुछ करें, लेकिन फिर डिटैच हो जाए। कई बार हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं फिर हमारे मन में ये भावना आ जाती है या ये संकल्प आ जाता है कि हम इनके प्रति ये कर रहे हैं तो ये हमें इस प्रकार से रेस्पॉन्स दे। मना हम बच्चों के लिए कर रहे हैं तो बच्चे हमारा माने ही माने, हम बड़ों के लिए कर रहे हैं तो बड़े हमारे ऊपर प्यार करें, हम इतना कर रहे हैं तो हमें सफलता मिलनी ही चाहिए, और वो अगर नहीं मिलती है तो हम दुखी हो जाते हैं, हम टेंशन में भी आ जाते हैं, फिर कभी हम सोचते हैं इतना करके क्या फायदा, क्यों करने का इतना सारा। तो बहन आप ये बुद्धि में रखना, अटैच और डिटैच। अटैच माना कनेक्शन, जैसे आप बहुत नजदीक से हैं, ये सारे मेरे नजदीक के लोग हैं, ऐसा समझ करके उनके साथ व्यवहार करना, उनके प्रति जो भी जिम्मेवारी है वो निभाना, प्रेम प्यार से निभाना, शांति से निभाना, अपना समझ कर निभाना, परंतु फिर उनसे कोई अपेक्षा न करना। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं कमल के फूल का। जैसे कमल का फूल कीचड़ में पैदा हुआ है, लेकिन फूल को कीचड़ जरा भी नहीं लगता है, वो ऊपर का ऊपर है। उसी प्रकार हम संसार में रहते हुए, क्योंकि अगर हम सबके लिए प्रेम से करते हैं, अपना समझ करके करते हैं, समय प्रति समय उन्हें जो भी सहयोग चाहिए हमारे द्वारा वो दे देते हैं, तो उसका एक आनंद अपने को ही मिलता है और बहुत हम हल्के रहते हैं। लेकिन अपेक्षा नहीं करने का, रिटर्न मुझे ये मिलना चाहिए, अगर रिटर्न की अपेक्षा करते हैं और वो रिटर्न नहीं मिलता है तो हम फिर दुखी हो जाते हैं। इसलिए करो न्यारे हो जाओ, जैसे कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपना
जी
पार्ट प्ले किया। जैसे एक ड्रामा के अंदर हर एक्टर अपना अपना पार्ट प्ले करता है बहुत सुंदर रीति से, उस समय हमें ऐसे लगता है कि बहुत कितना ये लोग एक दो के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पार्ट पूरा हुआ बाजू हो गए। इसी प्रकार हम करें, कर्म करें, लेकिन कर्म के फल की जो इच्छा है वो इच्छा मन के अंदर न पैदा करें, करते चले करते चले। कहा ही जाता है कर भला तो हो भला, और भी कहा जाता है करते रहो सबका भला, यह है जीवन जीने की कला।
जी दीदी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। मैं समझता हूँ हमारे दोस्त जो ये सवाल पूछ रहे थे
तो आप ये
उनको ये
कला,
बात समझ में आएगी। दीदी, अगला प्रश्न हमारे एक दोस्त पूछ रहे हैं। इनका नाम है देवज्योति पॉल, और देवज्योति हमारे साथ YouTube से जुड़े हैं। वो सवाल पूछते हैं, राजयोग मेडिटेशन के टाइम आंखें बंद रखें या खुला रख के करना है, ये प्रश्न पूछते हैं।
आपने देव ज्योति बहन, आपने बहुत
भाई है
सुंदर
दीदी,
सवाल किया है। भाई
देवज्योति भाई है दीदी।
है, अच्छा देव ज्योति
जी
भाई, आपने बहुत सुंदर सवाल किया है, और ये अनेक लोगों का सवाल होता है कि मेडिटेशन करने के समय आंख बंद करें या खुली करें। तो आज तक हमने जितने भी मेडिटेशन सीखे हैं उसमें मोस्टली क्या होता है, आंखें बंद कर देते, आंखें बंद करके ही हमको हमने मेडिटेशन आज तक सीखा है। लेकिन राजयोग मेडिटेशन जो है वो इजी मेडिटेशन है, इसको सहज राजयोग भी कहा जाता है। तो सहज राजयोग के अंदर सहज नाम है ना, राजयोग एक नाम है लेकिन सहज राजयोग भी एक इसका ही नाम है। तो हमारी सहज जो स्थिति है वो आंखें खोलने की स्थिति सहज है। हमें जब नींद आती है या हमें जब थकावट आती है तो हम आंखों को बंद रखते हैं या आंखें अपने आप बंद हो जाती है, लेकिन ये सहज राजयोग होने के कारण हमें आंखें खुली रखनी है नेचुरल, ये ज्यादा आप ध्यान रखें। कई लोग सोचते हैं कि योगा करना है तो त्राटक करेंगे, आंखों को एकदम सीधा करेंगे। ये राजयोग हमें ये सिखाता है कि शरीर के कोई भी इंद्रियों के ऊपर ताण नहीं आना चाहिए, किसी भी प्रकार से बहुत सहजता सहज बैठो, आंखों को सहज रखो, भले आंखें कभी थोड़ी झपके भी, आगे पीछे भी करे, कोई हर्जा नहीं, क्योंकि राजयोगा मेडिटेशन जो है वह अंदर की यात्रा है, वह हम मन से कर रहे हैं। और हम लाखों भाई बहनों का अनुभव है कि जब हम अंदर चिंतन शुरू करते हैं, मेडिटेशन शुरू करते हैं, हमारा मेडिटेशन अंदर ही अंदर शुरू हो जाता है, तो हम अंदर एकाग्र होते जाते हैं। और जैसे अंदर एकाग्र होते जाते हैं, ये हमारी सारी इंद्रियां, फिर आंखें भी हमारी जैसे एक्टिव हो जाती है। इसलिए दूसरी बात है कि हम चिंतन के द्वारा जो वाइब्रेशंस है वो ये परिसर में फैलाना चाहते हैं। और वाइब्रेशन को फैलाने का सुंदर जो साधन है वो हमारी ये आंखें हैं। इसलिए आंखों को सहज रीति रखना है। जैसे समझो आप अपने माँ बाप को याद कर रहे हो कि आंखें बंद करते हो, और भी उन्होंने जो बताई हुई बातें हैं वो आप सोचते सोचते उसमें खो जाते हो। कभी कभी इतना खो जाती है व्यक्ति कि इधर उधर से कोई आया वो भी उसे मालूम नहीं पड़ता है। तो इसी प्रकार हम लोगों को भी ये सिखाया जाता है, आंखें बंद करो और आंखें खुली रखो और मेडिटेशन करो। आंखों के ऊपर बंद करने की कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आंखें बंद करके मेरा कंसंट्रेशन ज्यादा अच्छा हो रहा है तो आंखें बंद करें तो भी अच्छा, लेकिन हम लोग जो करते हैं वो आंखें खुली रख करके ही करते हैं। और भी समझो कि ये राजयोग जब हम करना शुरू करते हैं तो उसके अंदर हम लोग कभी कभी घंटों बैठ करके योग करते, आंखें खुली होती है, लेकिन हम आंखों की प्रक्रिया नेचुरल होती है, जोर जबरदस्ती नहीं होती।
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, ये जो जवाब आपने दिया बंद आंखों से करें या खुली आंखों से। बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो नए नए मेडिटेशन सीख रहे हैं, और जब से ये लॉकडाउन हुआ है बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन भी सीखना शुरू किया है। अगले प्रश्न पर मैं आता हूं, और विद्या जी ये सवाल पूछते हैं, और विद्या जी का प्रश्न है कि ग्रुप में अगर हमारी किसी से नहीं बनती है तो उससे किनारा कर लेना चाहिए या अवॉइड करना ठीक रहता है हमेशा के लिए, ये प्रश्न पूछते हैं।
आज तक की हमारी नेचर है कि हमारा अगर किसी से नहीं जमता है तो हम किनारा कर लेते हैं, चलो भाई जाओ, फिर डिस्टर्ब हो जाओ या अनबनी कुछ हो जाए, उसके बजाय निकल जाना अच्छा है। लेकिन हमने ब्रह्मा कुमारी में ये सुना, परमात्मा के मुख से सुना कि किनारा करने के बजाय सहारा बनो। अगर हम वहां रह करके अनेक आत्माओं को अपना फायदा करके दे सकते हैं या उनके साथ मिलजुल करके रह सकते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर हमारे अंदर उतनी क्षमता नहीं है और हम बार बार ग्रुप में जाकर के डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमारी खुशी गायब हो रही है, तो फिर हमें किनारा करना अच्छा होता है। इसमें अपनी शक्ति को आजमाना होता है और अपने आप को थोड़ा समझाना भी पड़ता है कि सहारा बनना अच्छा है या किनारा बनना अच्छा है। अगर हम किसी के सहारे बने, किसी को मददगार बने, किसी की हम सेवा करें, तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता है, उससे हमारा भाग्य भी बनता है। और आगे चल करके जो भी कुछ अनबनी की बातें होती है वो सारी निकल जाती है, वो कुछ थोड़ा टाइम के लिए ही होता है। लेकिन अगर इतना भी बियर करने की मेरे अंदर क्षमता नहीं है, अपनी क्षमता को देखना पड़ता है इसमें, तो फिर हम थोड़ा टाइम के लिए किनारा करें, वो भी अच्छा होता है। तो विद्या बहन, आप अपनी क्षमता को देखो क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात है खुश रहना, सबसे बड़ी बात है लाइट रहना, सबसे बड़ी बात है सबके साथ प्यार से मिलजुल करके चलना।
जी दीदी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें अपनी कैपेसिटी जाननी चाहिए कि हम कितना कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, और जब वो हमारी कैपेसिटी से बियॉन्ड हो तो थोड़े समय के लिए किनारा करना अच्छी बात है, बट परमानेंट के हिसाब से आपको सोचना चाहिए कोई दूसरा क्रिएटिव सॉल्यूशन। अगला प्रश्न हमारे एक दोस्त पूछती हैं, इनका नाम है दिशा, और दिशा यूट्यूब से हमारे साथ हैं। वो कहते हैं हमें हमेशा प्रेरित रहने के लिए क्या करना चाहिए, ये प्रश्न पूछती हैं। हम में से बहुत सारे लोग मोटिवेशन बाहर ढूंढते हैं, हमें लगता है कि कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लें, कोई मोटिवेशनल टॉक सुन लें, कुछ अच्छी फिल्म देख लें तो हम मोटिवेटेड रहें, प्रेरित रहें, ऐसा हम सोचते हैं, बट हमेशा हमारे साथ ऐसा हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
हमेशा प्रेरित रहने के लिए दिशा बहन, बहुत सुंदर बात ये है कि आप सदा मेडिटेशन के द्वारा परमात्मा से अटैच रहें, क्योंकि मैंने अपने खुद के जीवन में भी ये बहुत अनुभव किया है। परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जिसके अंदर बहुत प्रेरणाएं हैं, बहुत उसके अंदर पॉजिटिविटी है, जैसे वो उमंग उत्साह का एक स्रोत है। लेकिन केवल मेडिटेशन नहीं, वो आकर के बहुत सारा ज्ञान भी दे रहा है, और वो ज्ञान माना हमारे जीवन को कैसे चलाना है भिन्न भिन्न परिस्थितियों में। ऐसे समझो परमात्मा का ज्ञान माना जीवन जीने की कला है। हर निगेटिव पॉजिटिव भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हम कैसे अपने आप को उत्साहित रखें, कहाँ किसको निग्लेक्ट करें, कहाँ किसको छोड़ दे, कहाँ किसको पकड़ के चले, कहाँ थोड़ा डोंट केयर करे, किस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान दे, ये सारी बातें ज्ञान के माध्यम से परमात्मा हमें दे रहे हैं। हम बहुत अच्छी तरह से उसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अगर आप सदा ऐसे उमंग उत्साह में, मोटिवेशन स्टेज में बहुत अच्छी तरह से रहना चाहते हो, तो उसका जो स्रोत है उसके साथ कनेक्शन जोड़ने की बहुत जरूरत है। कुछ ज्यादा टाइम नहीं, आप सवेरे एक आधा घंटा जीवन के प्रति परमात्मा क्या बोलते हैं, समस्याओं के प्रति क्या बोलते हैं, मनुष्य आत्माओं के प्रति क्या बोलते हैं, अभी ये महामारी चल रही है इसके प्रति भी भगवान ने बताया हुआ है, तो ये सारा क्या है, वो तो सारी हम ज्ञान की बातें सुने और फिर मेडिटेशन करें। मेडिटेशन में क्या होता है, हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, डायरेक्ट स्रोत के साथ थोड़ा टाइम जुड़ जाते हैं, तो उसकी जो उमंग उत्साह की धारा है, उसकी जो आनंद की धारा है, प्रेरणाओं की धारा है, मनुष्य जीवन के प्रति उच्चारे हुए महावाक्य है, वह ऐसा तो मोटिवेट करते रहेंगे, आपको चुप बैठने नहीं देंगे। आपके आगे आगे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए ना, आप उसको ऐसे निग्लेक्ट करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और बहुत अच्छी तरह से आप सदा उत्साह में रहेंगे, कुछ करने की प्रेरणा आती रहेगी, कुछ बनने की प्रेरणा आती रहेगी, दूसरों के लिए भी कुछ करें ये भी प्रेरणा आती रहेगी। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप अपने लिए, ऐसा नहीं बोलना कि मेरे पास टाइम नहीं है। मोस्टली लोग यही कहते मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ, आप 1 घंटा ये करो अपने लिए। देखो शरीर को चलाने के लिए भी हम 3-3 टाइम खाते हैं, शरीर को फ्रेश रखने के लिए हम व्यायाम के लिए भी घंटा देते हैं, शरीर को फ्रेश रखने के लिए हम आराम करते हैं। एक दिन भी हमको नींद ना आए तो हम थोड़ा चिंतित हो जाते हैं कि नींद नहीं लगी, ब्रेन फ्रेश नहीं है, नींद करना चाहिए। इसी प्रकार ये जो हमारा मन है 24 घंटा काम कर रहा है, तो 24 घंटा काम करने वाले मन को भी उमंग में रखने के लिए, प्रेरित स्टेज में रखने के लिए, मोटिवेशनल स्टेज में रखने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो मन का जो भोजन है वो है ज्ञान। ज्ञान भी संसार में अनेक प्रकार का है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ परमात्म ज्ञान। परमात्म ज्ञान एक ऐसा सुंदर, और वर्तमान समय क्या करना चाहिए, वर्तमान समय हमें कैसे चलना चाहिए, वर्तमान समय हमें कैसे दूसरों के साथ डील करना चाहिए। दूसरा कोई कुछ करता है, हमारा उमंग उत्साह कम करता है, उसका भी क्या कारण है, सारी बातें, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ये ज्ञान है। और फिर मेडिटेशन, आराम। जैसे शरीर के लिए आराम है, मन के लिए मेडिटेशन भी एक आराम है। जब वो हम करते हैं, फिर आप स्वयं इतना उमंग उत्साह का धारा बनेंगे जो आप औरों को भी प्रेरणा देते रहेंगे, आपसे और लोग भी प्रेरणाएं लेते रहेंगे। तो सचमुच आपका जो नाम दिशा है वो दिशा नाम सार्थक हो जाए।
जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही दीदी कि हम बाहर प्रेरणा ढूंढते हैं, बट अगर हम अपने आप को ऐसा बनाते हैं तो फिर हम अपने नाम को सार्थक कर सकते हैं। जैसे दिशा जी के लिए आपने कहा कि आप खुद दिशा देने वाले बन सकते हैं अगर आप अपने आप को ऐसे स्ट्रांग और शक्तिशाली बनाते हैं। अगला प्रश्न हमारे साथ है और थोड़ा संजीदा है। सवाल पूछते हैं मेघा जी, और मेघा यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हैं। वो कहते हैं कि दीदी मुझे 1 साल से एक ही विचार बार बार आता है, वो है डेथ का। इसकी वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई हूँ और मेरा वेट 60 से अब 44 हो गया है, मैं क्या करूँ, ये पूछते हैं। और मेघा जी का सवाल ही नहीं, मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग इस लॉकडाउन में ऐसा महसूस करते रहे हैं, बहुत सारे लोगों को सुसाइडल थॉट्स आए हैं और पहली बार उनके लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा होगा जहां पर वो इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप गाइडेंस प्रोवाइड करें कि क्या वो पॉजिटिव करें।
मेघा बहन, आपका ये विचार सुनकर के सचमुच मेरी भी दिल भर आए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये जीवन जो है ना एक बड़ी परमात्मा से मिली हुई गिफ्ट है। इस गिफ्ट को हमें बहुत संभाल के रखना चाहिए। और डेथ का तो सोचना भी नहीं चाहिए। डेथ तो जिस समय जिसकी होने वाली है वो हो जाती है, लेकिन हम खुद होकर के अपने इस अमूल्य जीवन को समाप्त करें, ये अच्छी बात नहीं। तो आप इससे ऊपर उड़ जाओ। कैसे उठेंगे आप ऊपर, उसके लिए सबसे बड़ी बात है, आप कहेंगे आप क्या डायरेक्शन देंगे, तो मैं ये कहूंगी आपके आजू बाजू में कहां पर भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कोई केंद्र हो या कोई ब्रह्मा कुमारी में जाने वाला आपके संपर्क में हो तो आप उसके संपर्क में आ जाओ, उससे आप ज्ञान योग की बातें सीखो। ये डेथ का संकल्प आपके बुद्धि से ऐसा उड़ जाएगा जो आपको लगेगा मैंने कभी ये विचार किया ही नहीं था। और मैंने प्रैक्टिकल में ये बहुत बहुत पुरानी बात है, एक दिन रात को 10:30 बजे हमारा दरवाजा खटखटाया एक व्यक्ति ने, तो रात का समय था, फिर भी मैंने सोचा कि अभी खटखटा रहे हैं तो खोलना चाहिए, तो मैंने जाकर के खोला। तो एक बहन थी, वो ऐसे खड़ी थी और मुझे खाली निहारने लगी। मैं भी थोड़ा देखती गई, थोड़ा अंदर से वो भी, मेरे को भी थोड़ा संकल्प चला कि ऐसा क्यों कर रही है। फिर उसने कहा कि बहन जी, जब उसने बहन जी बोला तो मुझे आया कि ये मेरे को जानने वाली है कोई, तभी तो इसने ये मेरे संपर्क में आई हुई है। तो बोला, बहन जी हमारे मतलब यहाँ से एक नजदीक तालाब है। तो बोला, मैं उस तालाब में जाकर के अभी खुद को खत्म करने वाली, मुझे नहीं जीना है। लेकिन पता नहीं मुझे यहाँ आने की क्यों इच्छा हुई, जाते जाते तो मैं आई हूँ, 2 मिनट मेडिटेशन मुझे करने दो और मैं जाकर के अभी सुसाइड करूंगी। तो मैंने कहा, मैंने उसको फिर आधा पौना घंटा समझाया सारी बातें, और सारी बातें समझा करके थोड़ा उस समय का तो उसका संकल्प मैंने टाल दिया। फिर उसके घर वालों को बुलाया, घर वाले के हवाले कर दिया, और फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे देखा कि वो बहन राजयोगा मेडिटेशन करती गई और अभी बहुत अच्छी है। ऐसे ही एक दिन एक सिस्टर इंचार्ज, वो मेरे से बातें कर रही थी, तो बोला, बहन जी मैं ब्रह्मा कुमारी में आई हूँ ना, मेडिटेशन में कर रही हूँ ना, इसलिए मैं बहुत अच्छी हूँ, नहीं तो मैं कभी सुसाइड करके कभी की कभी मैं परमात्मा के गोद में चली गई हूँ। तो आजकल कईयों को ये डेथ का संकल्प आता है क्योंकि वो परिस्थिति से फेस नहीं कर पा रहे हैं, बैटरी समझो डाउन है, डाउन बैटरी सोचती है चलो ये दुख ये टेंशन ये भय ये कुछ नहीं चाहिए, उसके बजाय चले जाए। लेकिन नहीं, आज आपको ये प्रण करना है, जैसे हमारा लास्ट मेडिटेशन होगा उस मेडिटेशन में आपको ये प्रण करना है कि मैं आज से डेथ का संकल्प कभी नहीं करूंगा, मैं चेतना हूं, चेतना बन करके रहूंगी। लेकिन आधार चाहिए ना किसी को जीवन में, अपने जीवन में किसी का आधार चाहिए, तो अब आधार देने वाला परमात्मा हमें बहुत सुंदर आधार दे रहा है मेडिटेशन के द्वारा। भगवान कैसे आधार देगा, मेडिटेशन के आधार द्वारा देता है वो। तो आप परमात्मा के कनेक्शन में आओ, मेडिटेशन करो, अपने मन का ये संकल्प छोड़ दो, इसको बिंदु लगाओ आज, फुल स्टॉप, आज से इसके बाद सुसाइड का संकल्प कभी नहीं मन के अंदर लाना। दूसरा, ये भी मैं आपको बताती हूँ, परमात्मा ने कहा है कि सबसे बड़ा पाप है आत्महत्या, सबसे बड़ा पाप है, तो ये पाप भी आपको कभी नहीं करना है। लेकिन आओ, उठो, जागरूक हो जाओ, अपने मन को बहुत अच्छी जागृति दो, ये जीवन बड़ी सुंदर देन है परमात्मा की, ये जीवन एक सुंदर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमें इस सृष्टि पर पार्ट प्ले करने की, और इस जीवन के पीछे बहुत सारा रहस्य है। तो आप, और मैं आपको ये बताती हूँ कि हम तो कभी मरते ही नहीं है क्योंकि हम तो चेतना है, ये शरीर तो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट को खत्म नहीं करना है। और भी इसके द्वारा ऐसे कहा जाता है कि ये शरीर मिला हुआ है नर से नारायण बनने के लिए, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। लक्ष्मी और नारायण मीन्स परफेक्ट मैन, तो परफेक्ट बनने के लिए हमें ये बॉडी मिली हुई है, इस सृष्टि रूपी ड्रामा में सुंदर पार्ट प्ले करने के लिए ये बॉडी मिली हुई है। इसलिए आप अपने मन से निराशा को हटा दो और आशावादी बनो, अपने माँ बाप का सोचो, अपने भाई बहनों का सोचो, अपने जीवन का सोचो, और सबसे बड़ी बात आप मेडिटेशन करो। फिर तो आपके अंदर इतना उमंग उत्साह आ जाएगा कि आप संसार के अंदर भी जो कई लोग इस प्रकार से सोचने वाले हैं, जैसे अभी श्री निधि भाई ने कहा, तो आप उनको भी उनसे फ्री करो। ठीक है, तो आज क्या करेंगे, आज लास्ट के मेडिटेशन में आपको देश का संकल्प परमात्मा को अर्पण कर देना है। आज से कभी भी ऐसा नहीं सोचना, लेकिन और भी उमंग उत्साह में आकर के अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से खुद के लिए भी सफल करना और उनके लिए भी सफल करना, और करोगे, ये मेरा पूरा विश्वास है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने बहुत ही डिटेल में ये बात समझाई कि ये क्यों एक अच्छा ख्याल नहीं है, और ऐसा होता है जीवन की समस्याओं को हम बड़ा समझने लगते हैं, मगर ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और सुसाइडल थॉट्स आना ठीक है, बट उसका सॉल्यूशंस भी हमारे पास है, और जीवन में हमेशा सॉल्यूशंस होते हैं, आपने ये बताया, और ईश्वर साथ है ये भी बताया, और मेडिटेशन करने का एडवाइस दिया है, और आप करवाएंगे भी मेडिटेशन कुछ देर में जो हमारे सभी दोस्त लाइव करेंगे। बहुत सारे दोस्तों ने सवाल पूछा है, मैं सारे सवाल नहीं ले पाता हूं दोस्तों, वक्त की भी कमी होती है, बट मैं दो तीन सवालों को कभी कभार मिलाने की भी कोशिश करता हूं और कलेक्ट करके सवाल पूछने की कोशिश करता हूं। आज एक और सवाल है जो फेसबुक से हमारे साथ मीना केतन बेहरा पूछते हैं। मीना जी का प्रश्न है, वो कहते हैं, हाउ टू बिकम अ गॉड लविंग पर्सन फ्रॉम अ गॉड फियरिंग पर्सन। अक्सर लोग ये कहते हैं कि भगवान से डरो, तो डर के कारण लोग मतलब डर के कुछ चीजें करते हैं, बट वो कहते हैं कि ये इतना ज्यादा आदत हो गई है भगवान से डरने की, भगवान से प्रेम करना थोड़ा तो मुश्किल जैसा लगता है, तो गॉड से प्रेम कैसे हो जाए, वो इजी मेथड्स पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है।
बहुत अच्छा सवाल है आपका भाई, गॉड से डरना भी है और गॉड से प्रेम भी करना है। पहले मैं प्रेम करना बताऊंगी। सही रीति से परमात्मा के ऊपर प्यार हमारा तब पैदा होता है जब हम दो बातों की जानकारी अच्छी तरह से स्वयं को देते हैं। एक है, मैं खुद कौन हूं रियल। मैं जब अपने आप को अच्छी तरह से जानती हूँ, मानती हूँ, फिर परमात्मा भी कौन है, क्योंकि भगवान के लिए अनेक बातें हो गई है। हर एक ने अपना अपना भगवान बना दिया है, जिस कारण भी उसके प्रति कभी प्यार होता, कभी भावना होती, कभी अंधश्रद्धा भी हो जाती, कभी डर भी पैदा होता, कभी कोई शंका भी आ जाती, बहुत सारी बातें होती है। लेकिन सही रीति से हम परमात्मा को जाने कि परमात्मा कौन है। परमात्मा का मैं खाली आज प्रेम के कारण आपको इतना ही बताऊंगी कि परमात्मा है हमारा माता पिता। शास्त्रों ने तो यहां तक कह दिया कि परमात्मा इंसान का सब कुछ है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। क्या माता पिता पर प्रेम नहीं होता है, क्या बंधु भाई पर प्रेम नहीं होता है? वो अपने आप होता है, वो कोई पैदा करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप होता है। दुनिया में सारे पुरुष ही है, लेकिन ये मेरा भाई है तो प्रेम कहाँ से पैदा हो गया, अपने आप हो गए। ये मेरी बहन है, सारी स्त्रियां हैं, लेकिन ये मेरी बहन है, प्रेम पैदा हो गया। तो रिश्ता पैदा कर देता है, रिश्ता जो है वो प्रेम पैदा कर देता है, सही रिश्ता। तो भगवान के लिए गाया हुआ है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम माता पिता हम बालक तेरे। लेकिन कैसे बालक है हम उसके, तो आप ब्रह्मा कुमारी में जाकर के ये समझो कि हम भगवान के बालक है सचमुच, और वो हमारा माता पिता है। और जब मैं बालक वो माता पिता, तो प्रेम आपके आप पैदा हो जाता है। उसको पैदा करना नहीं पड़ता है। फिर दूसरी भी ये बात है कि प्रेम परमात्मा से प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने कई सारी हमको अच्छी चीजें अभी भी दी हुई है, जबकि हम उसको इतना जानते नहीं थे, फिर भी प्राप्त है। तो जितनी भी पॉजिटिव बातें मेरे जीवन के अंदर है, वो भी अगर हम याद करते हैं और हे भगवान तुमने मुझे कितना दिया है, ये कितनी सुंदर प्रकृति दी है, कितने घर में परिवार दिया हुआ है, कितना ये अच्छा शरीर दिया हुआ है, ये सारी बातें भी जब हम याद करते हैं, सोचते हैं, तो भी हमारे मन के अंदर परमात्मा के प्रति प्यार पैदा हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये एक बहन के नाते से सुझाव देती हूँ कि आप परमात्मा को अच्छी तरह जानो। जब जानेंगे तो प्यार इतना पैदा हो जाएगा आपके मन में उसके प्रति, जो आप उसके प्यार में रहते हुए अपना काम काज नौकरी धंधा बाल बच्चे कितना सुंदर रीति से परवरिश उनकी करेंगे, जो आपने पहले भी नहीं की। और फिर परमात्मा का प्यार आप खुद भी पाएंगे और वो परमात्मा का प्यार फिर बांटेंगे भी, इतनी सारी बातें हो जाएगी, लेकिन खाली हमें उसका परिचय चाहिए। तो परिचय को प्राप्त करो और परमात्मा के साथ साथ अपना भी परिचय चाहिए कि मैं कौन हूँ। जब मैं मेरा परिचय भी प्राप्त करती हूँ, भगवान का परिचय भी प्राप्त करती हूँ, तो प्रेम ऐसे उमड़ने लगता है। दिन अंदर परमात्मा के प्रति बहुत सारी समझो शुक्रिया कहो, थैंक्स कहो, प्यार के शब्द कहो, तो अपने आप आना शुरू हो जाता है। तो आप इसका अनुभव करो, लाभ लो। और भी अगर परिचय में प्राप्त कराऊंगी अभी तो टाइम बहुत जाएगा उसके लिए, श्रीनिधि भाई अगर टाइम देते हैं तो फिर मैं वो भी कर सकती हूँ अभी। लेकिन फिर भी हमारे जो यूट्यूब पर बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके भी कोर्सेज चल रहे हैं, या फिर ये लॉकडाउन उठ जाएगा अभी फिर सेवा केंद्र पर जाओ। लेकिन ये याद रखो, बिना परिचय हम गॉड लवली नहीं बन सकते। परिचय प्राप्त करो, फिर इतना प्यार आप सोच भी नहीं सकते। और डरना किसमें है, पाप नहीं होना चाहिए, गलत काम करने के लिए डर। बाकी परमात्मा के प्रति तो आप इतना प्राप्त करोगे, जैसे एक आपके लौकिक माता पिता और आप है ना, वो कैसा रिश्ता है, उसी प्रकार हम भगवान से इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना आनंद, इतनी खुशी, जीवन के लिए शक्ति, जीवन के लिए प्रेरणा, दूसरों की सेवा करने के तरीके बहुत कुछ सीखते हैं। और वो जब सीखते हैं तो भी और उसके प्रति प्यार पैदा हो जाता है। फिर अलग अलग समय पर हम भगवान की बहुत मदद लेते हैं और वो मदद करता भी है, वो मदद देख के भी प्यार पैदा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, परमात्मा के टच में हम जब आते हैं तो हमारा खुद का परिवर्तन बहुत हो जाता है। सारी निगेटिविटी, जितनी भी निगेटिविटी है, फिर वो डेथ के प्रति हो, ईर्ष्या हो, क्रोध हो, टेंशन हो, तेरा मेरा हो, कोई भी निगेटिव बात है ना, जब हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, वो माता पिता हमारा बन जाता है, तो कोई निगेटिव बात हमारे मन में, हमारे जीवन में धीरे धीरे सारी बातें निकल जाती, और हम ऐसे समझो कि कार्टून से फूल बन जाते हैं। तो जब कार्टून से फूल बन जाते हैं तो वो भी हमारे ऊपर प्यार करता है और हम भी उसके ऊपर प्यार।
जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी कि संबंध जरूरी है, कि अगर हम ईश्वर के साथ वो कनेक्शन नहीं रखते, एक रिलेशनशिप नहीं रखते, तो शायद वो प्यार करना, वो प्यार होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और आपने कहा कि बहुत अच्छे से एडवाइस किया, हमारे कुछ दोस्तों ने भी पूछा है कि ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में पूछा, ये भी पूछा कि भाई हम मेडिटेशन और कहाँ सीख सकते हैं। आपने दोनों ही प्रश्नों का उत्तर दिया कि लोग ऑनलाइन सीख सकते हैं और साथ साथ हमारे सेंटर्स पे भी जा सकते हैं। आखिरी प्रश्न मैं ले रहा हूँ दीदी, इसके बाद हम मेडिटेशन के लिए जाएंगे। हमारे दोस्त हैं, ये तिरुमल राजू नाम है इनका, राजू जी,
और ये प्रश्न पूछते हैं, कैन आई प्रैक्टिस गाइडेड मेडिटेशन, विल दिस बी हेल्पफुल, पूछते हैं कि जब हम गाइडेड मेडिटेशन सीखते हैं उससे फायदा होता है क्या, वो पूछते हैं।
होता है राजू भाई, आप राजा बन जाए अगर ये गाइडेड मेडिटेशन अच्छी तरह से सीखेंगे ना, आप सचमुच राजा बन जाएंगे। और आप राजा बनकर के अनेकों को राजा बनाएंगे, अनेकों की पालना भी करेंगे। गाइडेड मेडिटेशन थोड़े दिन के लिए तो हमको गाइड करके लेना ही पड़ता है, क्योंकि हमें कुछ मालूम नहीं है ना मेडिटेशन में क्या संकल्प करने हैं, कैसे संकल्प चलाने हैं, कैसे हम स्वयं में स्थित हो जाए, कैसे फिर परमात्मा से जुड़ जाए, कुछ बातें हमें मालूम नहीं है। जब कोई भी बात मालूम नहीं होती है तो हमें किसी ना किसी को गाइड बनाना पड़ता है। इसलिए गाइडेड मेडिटेशन का आप आधार लो, करो और फिर धीरे धीरे आप खुद मेडिटेशन करना सीख जाओ। और ये मेडिटेशन एक ऐसी क्रिया है, उसको कहते हैं हम ऑल अटेंशन विदाउट टेंशन, ये है मेडिटेशन। तो बहुत सुंदर मेडिटेशन आप कर पाओगे और मेडिटेशन के कई सारे लाभ है। सबसे बड़ा लाभ ये है कि हमारा मन जो है वो शांत हो जाता है, उसके अंदर प्रेम भर जाता है, आनंद भर जाता है, शक्तियां भर जाती है, पॉजिटिविटी भर जाती है, प्यूरिटी भर जाती है। मैं तो हमेशा खुद के लिए ये देखती हूँ और सर्व के लिए भी बताती हूँ कि राजयोग का मेडिटेशन ऑल इन वन है। अगर आपको शारीरिक हेल्थ चाहिए वो भी इससे सुधर जाती है, मन की हेल्थ चाहिए वो भी मिल जाती है, धन की प्राप्ति चाहिए वो भी मिल जाती है, संबंधों में सुधार चाहिए वो भी मिल जाता है, स्वभाव को बदलना है बदल जाता है, संस्कारों में चेंज करना है संस्कार चेंज हो जाते हैं, परिस्थितियां बदलनी है वो भी बदल जाती है। बहुत इसमें फायदा है ऑल इन वन, क्योंकि मेडिटेशन में क्या होता है हमारी ये जो मन की बैटरी है वो चार्ज हो जाती है। और जब एक बैटरी चार्ज बैटरी है फिर आप उसे कई काम ले सकते हैं ना। तो उसी प्रकार मेडिटेशन में हम अपने मन को बहुत चार्ज करते हैं, हमारे जीवन को, जीवन में क्या चाहिए सारा दिन बताओ, कर्म तो हम लोग कर ही रहे हैं, जिम्मेवारियां तो निभा ही रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर चाहिए शांति, हमारे मन में चाहिए निस्वार्थ प्यार, आनंद चाहिए, हल्कापन चाहिए, तो ये सारी बातें चाहिए ना, वो नहीं मिल रही है। काम तो हम बहुत कर रहे हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि मालिक के बजाय हम नौकर बन करके इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो मन हमारा बहुत चार्ज हो जाता है और हम आनंद से प्रेम से प्यार से ऐसा हल्का बन करके बहुत सारी जिम्मेवारियां निभा सकते, और आपको लगेगा नहीं कि इतने ऊपर मेरी जिम्मेवारी है या मेरे ऊपर इतनी जिम्मेवारी है। इसलिए आप, मैं सभी सुनने वाले मेरे भाई बहनों को मैं यही कहूंगी कि ये जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है इसके अंदर आप सभी जुड़े हुए हैं, तो हमारा एक परिवार बन गया है ना श्रीनिधि भाई, ये सारा हमारा परिवार है। देखो श्रीनिधि भाई आपको माउंट आबू से रोज याद करते हैं, और आपको भी जैसे 6 बजने को आए तो लगता होगा अभी मेरे को ये सुनना है, आज क्या सुनू, ये मतलब ये संकल्प चलते होंगे। तो आप, इसीलिए मैं ये कहूंगी कि आप मेडिटेशन जरूर करो। सभी सुनने वाले भाई बहनों के प्रति मैं यही शुभ आश रखती हूँ कि आज आप करना भी आपने शुरू किया होगा, लेकिन आप कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन जरूर करो, और मेडिटेशन के फायदे सारे अपने जीवन में कितने करके लो, जो आपको लगेगा अरे मेरे कल तक क्या सोच थे, आज वही परिस्थिति आई है, लेकिन आज मेरे सोच क्या बदल गए, मेरे बोल क्या बदल गए, और ये सारा प्रैक्टिकल है, थ्योरी नहीं है कुछ। मेडिटेशन हमारे जीवन को प्रैक्टिकल बनाता है, बिगड़ी हुई जीवन, बिगड़ा क्या, बिगड़ा हुआ है, यही बिगड़ा है ना हमारा, सोच बिगड़े हैं, बोल बिगड़े हैं, संबंध बिगड़े हैं, है ना, बाकी कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है, नाक इधर ही है, कान इधर ही है ना, मुख इधर ही है, लेकिन मुख के बोल बिगड़ गए। तो मेडिटेशन के द्वारा ये सारा सुधर जाता है, और सुधरते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सभी भाई बहनों को प्रति ये शुभ भावना रखती हूँ कि आज से आप बहुत अच्छा मेडिटेशन करोगे, ज्ञान की बातें सुनोगे और अपने मन को बहुत अच्छी तरह से चार्ज करके इस संसार के अंदर हल्का फुल्का होकर के बहुत आनंद और प्रेम से अपने परिवार को भी पालेंगे। आई हुई समस्या तो कुछ भी नहीं, चुटकी से निकल जाएगी, कुछ नहीं है ना, वो निकल जाएगी। और आप, आपको लगेगा लॉकडाउन एक वरदान मिल गया, वरदान बन गया मेरे, इसके अंदर मेरे को और पॉजिटिव एनर्जी मिल गई। ठीक है, सभी करेंगे ये विश्वास है। ओम शांति।
जी दीदी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि ये लॉकडाउन के समय में भी अच्छे पॉजिटिवली हम नई चीजें सीख सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और एक नया अप्रोच देख सकते हैं कि सब कुछ हमारे पास जो चाहिए वो है, हमारी बॉडी ठीक है, अगर किसी में हेल्थ की प्रॉब्लम भी है तो भी हम बहुत कुछ कर पा रहे हैं, तो उस बात के लिए हम थैंकफुल रहें, अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करें। और आज अगर आपके ख्याल नेगेटिव चल रहे हैं तो उसको पॉजिटिव बनाने के बारे में भी आपने गाइडेंस प्रोवाइड किया। मैं सोचता हूँ हमारे सारे दोस्त इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं और वो लाइफ में इसको यूटिलाइज भी करेंगे। मैं हमारे सभी दोस्तों का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने आज सभी सवाल पूछे। अगेन दोस्तों, मैं सारे सवाल नहीं ले पाया, बट आपके जो सवाल आज नहीं ले पाए हैं उनको मैं कल लेने की कोशिश करूंगा। और कल संडे है तो कल बी द चेंज सीरीज संडे में, संडे के दिन इंग्लिश में होता है, तो इंग्लिश में क्वेश्चन और इंग्लिश में ही आंसर्स दिए जाएंगे। और कल हमारे साथ मास्टर ऑफ मेडिटेशन के रूप में सिस्टर डेनिस जुड़ेंगे, और वो भी लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिसर ऑफ मेडिटेशन है। तो इंग्लिश में कल सवाल जवाब का कार्यक्रम फिर ऐसा ही होगा और आप सवाल पूछ सकते हैं, लाइव आपके क्वेश्चंस लिए जाएंगे और आपके क्वेश्चंस के लिए हमारे मास्टर्स आंसर करते हैं। और आज आप लोगों ने जो प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों के लिए दीदी जी ने अपने जीवन के अनुभव से, अपने आध्यात्म की गहराई से, अपने चिंतन मनन से जो चीजें बहुत सारे लोग कठिन तपस्या से और लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस से जो चीजें हासिल करते हैं, उन चीजों को बहुत ही सिंपल और तैयार तरीके से आपके सामने रखा है कि आप सिर्फ उसे अपने लाइफ पे अप्लाई कर लें और प्रैक्टिकली वो चेंजेस आप देख सकते हैं। तो मैं दीदी जी का धन्यवाद करता हूँ आप सभी दोस्तों की तरफ से कि वो आज खास पुणे से हमारे साथ जुड़े और हमें गाइडेंस प्रोवाइड किया। दीदी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीदी, मैं अनुरोध करता हूँ हर दिन हम अपारे मास्टर ऑफ मेडिटेशन के साथ आखिर में 3-4 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं, तो आप सभी हमें मेडिटेशन कराएं और गाइडेड मेडिटेशन में हम आपके साथ मेडिटेशन करें।
मैं सभी के लिए यही कहूंगी कि अभी हम जो मेडिटेशन करेंगे उसमें शक्ति का अनुभव करेंगे, क्योंकि आपने जितने भी प्रॉब्लम बताए उन सबको सॉल्व करने के लिए शक्ति की जरूरत है। तो एक ही शक्ति की पॉइंट लेकर के हम उसके ऊपर मेडिटेशन करते हैं। परमात्मा से आज हम शक्ति का अनुभव करते हैं। आंखें खुली रखो और जो भी मैं बताऊंगी मुख से बताऊंगी, आप उसको मन में सोचना और देखना। जो मैं एक वाक्य बोलूंगी, सेंटेंस बोलूंगी, तो आप अपने मन में संकल्प निर्माण करना और ऐसे देखना, स्वयं को प्रकाश रूप में देखो जो आप है। ये शरीर तो एक वस्त्र के समान है, इसको धारण करने वाली मैं एक डिवाइन लाइट हूँ। अपने आप को डिवाइन लाइट के रूप में देखो जिसका निवास मस्तक में, मैं चेतना हूँ, शक्ति स्वरूप, मास्टर सर्व शक्तिवान हो, क्योंकि मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा की संतान होने के कारण सर्वशक्तियाँ मुझ आत्मा को प्रॉपर्टी के रूप में परमात्मा से प्राप्त है ही है। मुझ आत्मा में शांति की शक्ति है। सहन शक्ति है। सहयोग शक्ति है। एडजस्टमेंट पावर है। सामना करने की शक्ति है। निर्णय करने की शक्ति है। जीवन को अच्छा चलाने के लिए जितनी भी सकारात्मक शक्तियां चाहिए वो सब मेरे पास है ही है। अब अनुभव करो। परम धाम से परमात्मा अपनी शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर बिखेर रहे हैं। एक शक्तियों का स्रोत परमात्म पिता से मेरी ओर आ रहा है। और मुझे डिवाइन लाइट में समा रहा है। मैं बहुत शक्तिशाली हो गई हूँ। परमात्मा की संतान हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, इसलिए मुझे डरना नहीं है, अशुभ सोचना नहीं है, मैं हूँ ही शिव की शक्ति। विघ्न मेरे लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग। अभी आंखें बंद करो सेकंड में, सेकंड के लिए अपने को बहुत शक्तिशाली अनुभव करो। सारी पॉजिटिव पावर है मेरे अंदर। अब जो अंदर पावर है उसे मुझे समय प्रति समय कर्म तक लाना है। अब आंखें खोलो, स्वयं को संकल्प दो, सभी शक्तियां परमात्मा से मुझे प्रॉपर्टी के रूप में मिली हुई है, तो मेरे अंदर है ही है, लेकिन रोज मेडिटेशन करके मुझे उन शक्ति रूपी शस्त्रों को धार लगानी है। शक्तियां सब है मेरे अंदर, अब उन्हें मुझे यूज करना है। ओ शांति।